डेनियल की पुस्तक संख्या 138 दानियल 11 का अनावरण इतिहास के माध्यम से एक भविष्य सूचक यात्रा।
दानियल के 91वें खर्मी अध्याय की 40वीं आयत परमेश्वर के वचन की सबसे गहन आयतों में से एक है। उसमें प्रस्तुत की गई भविष्यद्वाणी संबंधी इतिहासों में ही हिहेजकेल के दर्शन के पहियों के भीतर पहिए एक साथ आकर जुड़ते हैं। 1798 में मिलर राइट आंदोलन के अंत के समय के साथ और 1989 में तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन के अंत के समय के साथ अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा के आंतरिक और बाहरी इतिहास चित्रित किए गए हैं। इस आयत में निकट आते न्याय की घोषणा है जो 1798 में प्रथम स्वर्गदूत के साथ आ पहुंचा और आगे बढ़ते हुए 41वीं आयत के रविवार के कानून तक पहुंचता है। अतः ये आयत परमेश्वर की कलीसिया के अन्वेषणात्मक न्याय का चित्रण करती है जो मृतकों से आरंभ होकर 1,44,000 की मुहरबंदी तक और परमेश्वर के अपने मुख से लाओदीवाई एडवेंटिज्म को उगल देने तक जाता है।
1798 में जब पापाई सत्ता को घातक घाव लगा, तब से लेकर पद 41 में जब वो घातक घाव चंगा होता है तक का इतिहास उस पद में प्रस्तुत इतिहास में दर्शाया गया है। पद 41 से आगे का भाग परमेश्वर के क्रमशः तीव्र होते कार्यकारी न्यायों के संदर्भ में स्थित है जिनकी शुरुआत वहीं से होती है। इस भविष्यवाणी संबंधी अर्थ में पद 40 दानियल अध्याय 11 का अंत है और इस अध्याय के पद 1 और 2 उसकी शुरुआत है। अध्याय 11 मसीह विरोधी के विद्रोह को प्रस्तुत करता है, अध्याय 10 हिद्दे के नदी के दर्शन की शुरुआत का और अध्याय जन उसके अंत का प्रतिनिधित्व करता है। अध्याय 10 और 12 आरंभ और अंत का प्रतिनिधित्व करते हैं और अध्याय 11 बीच का विद्रोह है।
अध्याय 10 और 12 समान है क्योंकि अध्याय 11 के विपरीत वे दर्शन के संबंध में दानियेल के अनुभव का प्रतिनिधित्व करते हैं और अध्याय 11 ही दर्शन है। अध्याय 10 इब्रानी वर्णमाला का पहला अक्षर है, अध्याय 11 इब्रानी वर्णमाला का 13वां विद्रोही अक्षर है और अध्याय 12 वर्णमाला का अंतिम अक्षर है। हिद्देकेल नदी का दर्शन सत्य है।
11वें अध्याय में आरंभ अंत को दर्शाता है क्योंकि मसीह कभी नहीं बदलते। 40वें पद में प्रस्तुत अंतिम काल का वर्णन पशु की प्रतिमा की परीक्षा का समय है। वो परीक्षा का समय पशु के चिन्ह के साथ समाप्त होता है जिसका वर्णन 41वें पद में है। अतः पद 1 और 2 अवश्य ही 1,44,000 पर मुहर लगाए जाने के समय की चर्चा करते हैं क्योंकि वही समय पशु की प्रतिमा के निर्माण का समय भी है।
प्रभु ने मुझे स्पष्ट रूप से दिखाया है कि अनुग्रह का समय समाप्त होने से पहले पशु की प्रतिमा गठित की जाएगी क्योंकि ये परमेश्वर के लोगों के लिए वो महान परीक्षा होगी जिसके द्वारा उनका शाश्वत भाग्य निर्धारित किया जाएगा। यह वो परीक्षा है जिससे परमेश्वर की प्रजा को उन पर मुहर लगने से पहले अवश्य गुजरना है। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस खंड 15:15।
अंत के समय की पहचान कराने वाले दो संकेत चिन्ह हमेशा होते हैं। मूसा के सुधार आंदोलन में ये हारून का जम था और 3 वर्ष बाद मूसा का जम। बाबुल से बाहर आने और मंदिर का पुनर्निर्माण करने के सुधार आंदोलन में ये राजा डेरियस था और उसके बाद राजा साइरस। मसीह के सुधार आंदोलन में ये यूहना बपतिस्मा देने वाले का जन्म था और 6 महीने बाद मसीह का जन्म। मिलर राइटों के सुधार आंदोलन में ये 1798 में पापल तंत्र की मृत्यु थी और उसके बाद उत्तरानना में पोप की मृत्यु। तीसरे स्वर्गदूत के सुधार आंदोलन में ये राष्ट्रपति रेगन और राष्ट्रपति बुश प्रथम थे जो दोनों 1900 का प्रतिनिधित्व करते थे। दानियल अध्याय 10 पद 1 में हमें राजा साइरस की पहचान मिलती है।
फारस के राजा कोरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जिसका नाम बेल्तशस्सर कहलाता था, एक बात प्रकट की गई और वो बात सत्य थी, परंतु नियत समय बहुत लंबा था और उसने उस बात को समझ लिया और दर्शन का अर्थ भी उसकी समझ में आया। दानियल 10:1।
अध्याय 10 की आगे की आयतों में गब्रियेल द्वारा अध्याय 11 में भविष्यवाणी के इतिहास का दर्शन देने से पहले दानियल के अनुभव का चित्रण मिलता है। कुरुश अंत के समय को चिह्नित करता है क्योंकि इससे पहले दारियावेश का भतीजा कुरुश दारियावेश का सेनापति रहा था जिसने बेल शज्जर को मार डाला था और इस प्रकार 70 वर्षों के बंदीवास का अंत चिन्हित हुआ जो 583 से एसिठी नौठनप तक आत्मिक बाबुल में आत्मिक इसराइल के 1260 वर्षों के बंदीवास का प्रतिरूप था।
पृथ्वी पर परमेश्वर की कलीसिया इस दीर्घ अनवरत उत्पीड़न के काल में उतनी ही वास्तव में बंधुआई में थी जितनी कि निर्वासन काल के दौरान बाबेल में इसराइल की संतानें बंदी बनाकर रखी गई थीं। भविष्यवक्ता और राजा 7:7।
1709 में 1260 वर्षों का अंत का समय को चिन्हित किया, इसलिए 70 वर्षों का अंत उस इतिहास के लिए अंत का समय को चिन्हित किया। बेल शज्जर की मृत्यु और बाबुल के राज्य के अंत पर दारियस और साइरस दोनों दर्शाए गए थे क्योंकि दारियस के सेनापति के रूप में जिसने ये कार्य संपन्न किया साइरस दारियस का ही प्रतिनिधित्व कर रहा था। जब जॉर्ज बुश प्रथम ने 20 जनवरी 1995 को शपथ ली तब 1995 के पहले 19 दिनों तक रीगन राष्ट्रपति थे। हिद्देकेल का दर्शन अंत के समय साइरस के तीसरे वर्ष में आरंभ हुआ जब गब्रियल अध्याय 11 का भविष्य सूचक इतिहास दानियल के सामने खोलना शुरू करता है तो वो पहले दारियस के प्रथम वर्ष का उल्लेख करता है ताकि ये स्पष्ट रूप से स्थापित हो कि जो भविष्य सूचक इतिहास का दर्शन वो दानियल को प्रस्तुत करने वाला था वो अंत के समय के अंतिम काल 1989 में आरंभ होता है क्योंकि सभी भविष्यद्वक्ता उन अंतिम दिनों के विषय में उन दिनों की अपेक्षा अधिक बोलते हैं जिनमें वे स्वयं रहते थे।
परंतु मैं तुझे वो बात बताऊंगा जो सत्य की पुस्तक में लिखी हुई है और इन बातों में मेरे साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं केवल तुम्हारा प्रधान मीकाएल। और मादी दारा के प्रथम वर्ष में मैं भी उसे स्थिर करने और बल देने के लिए खड़ा हुआ था। दानियल 10:21-11।
दारियस के पहले वर्ष में जो 1989 में अंत के समय का प्रतिनिधित्व करता है गब्रियेल खड़ा हुआ। इस प्रकार ये दर्शाता है कि अंत के समय पर एक स्वर्गदूत आता है। 1789 में पहला स्वर्गदूत आया और 1989 में तीसरा स्वर्गदूत आया। तीसरे स्वर्गदूत का संदेश 2001 में सशक्त होने तक तीसरे स्वर्गदूत की मुहर लगना शुरू नहीं हुआ था पर 1989 में तीसरे स्वर्गदूत के आगमन का आंदोलन अंत के समय गब्रियेल के खड़े होने से दर्शाया गया है। गब्रियेल दानियल के को जो सत्य के धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है दिखाने जा रहा है और हिद्देकल का दर्शन सत्य की छाप लिए हुए है जिसे गब्रियेल प्रस्तुत करने वाला है। 10वें अध्याय के चौप्रता गब्रियल वह ने पहले ही दानियल को ये बता दिया था कि हिद्देकेल के दर्शन में वो जिस विषय की चर्चा कर रहा था वह अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा के साथ क्या होगा था।
अब मैं तुझे ये समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरी प्रजा पर क्या बीतेगा क्योंकि ये दर्शन अभी भी बहुत दिनों के लिए है। दानियल 10:14।
दानियल के 11वें अध्याय का दूसरा पद उस ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी मुहर 1989 में अंत के समय खोली गई थी और जो ये बताता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर की प्रजा पर क्या बीतेगा।
और अब मैं तुम्हें सत्य दिखाऊंगा। देखो फारस में और तीन राजा उठ खड़े होंगे और चौथा उन सबसे बहुत अधिक धनी होगा और अपनी धन संपत्ति के बल से वो सबको यूनान के राज्य के विरुद्ध उकसाएगा। दानियल 11:2।
साइरस 1919 के बाद के दूसरे राजा का पूर्व रूप है। वो मीडो फारसी साम्राज्य का राजा है जो बाइबल की भविष्यवाणी में अंत के दिनों के उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है जो दो सिंगों से बना है जिन्हें मीदी और फारसी दर्शाते हैं। 1919 में अंत के समय दो सींगों वाले पृथ्वी के पशु के राज्य के दूसरे राजा के बाद अभी भी तीन राजा होंगे क्लिंटन अंतिम बुश ओबामा और फिर एक ऐसा राजा होगा जो उन सब से कहीं अधिक धनी होगा। पहले बुश के बाद आने वाले तीन राजा अपनी राष्ट्रपति पदावधि के बाद ही धनी हुए और केवल इसलिए कि वे राष्ट्रपति बने थे। ट्रंप चौथा जो बहुत अधिक धनी था और अब तक का सबसे धनी राष्ट्रपति था ने अपना धन इसलिए नहीं कमाया कि वो राष्ट्रपति रहा था बल्कि मुख्यतः रियल एस्टेट निवेशों में अपने काम के माध्यम से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने से बहुत पहले।
पूर्व में सापेक्ष रूप से कहे तो अमेरिकी इतिहास में सबसे धनी राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। डोनाल्ड ट्रंप से पहले जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिकी इतिहास के सबसे धनी राष्ट्रपति थे, और उन्होंने भी ठीक ट्रंप की तरह अपनी संपत्ति अचल संपत्ति में निवेश के माध्यम से बनाई। वॉशिंगटन और ट्रंप दोनों गैर पारंपरिक राजनीतिक पृष्ठभूमि से राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। वॉशिंगटन राष्ट्रपति बनने से पहले मुख्यतः एक सैन्य नेता थे, और ट्रंप एक व्यवसायी और टेलीविजन हस्ती थे जिन्हें वॉशिंगटन की तरह कोई पूर्व राजनीतिक अनुभव नहीं था।
दोनों राष्ट्रपति अपने सशक्त व्यक्तित्व और नेतृत्व शैली के लिए जाने जाते थे, हालांकि उन्होंने इन गुणों को एक दूसरे से काफी अलग तरीके से प्रदर्शित किया। वॉशिंगटन क्रांतिकारी युद्ध और गणराज्य के शुरुआती वर्षों के दौरान अपने धैर्यवान, शांत और आत्मविश्वासी नेतृत्व तथा एकजुट करने वाली उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि ट्रंप नेतृत्व और शासन के प्रति अपने दृढ़ और मुखर दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। वॉशिंगटन और ट्रंप दोनों ही उल्लेखनीय विवादों के केंद्र रहे, हालांकि बहुत अलग कारणों से। वॉशिंगटन व्यापक रूप से सम्मानित माने जाने के बावजूद अपने समय में कई मुद्दों पर आलोचना के पात्र बने, जिनमें दास प्रथा पर उनके विचार भी शामिल थे। ट्रंप की राष्ट्रपति अवधि अनेक विवादों से चिन्हित रही, जिनमें सोशल मीडिया पर उनके कटु ट्वीट्स, उनके अमेरिका प्रथम नीतिगत निर्णय और उनकी अपनी आत्म जागरूकता शामिल थे।
सबसे धनी और छठे राष्ट्रपति को वैश्वीकरणवादी ड्रैगन शक्तियों को उकसाना था। जब हम अध्याय 11 के पद 2 का इतिहास 1776, 1789 और 1798 की अवधि के इतिहास पर रखते हैं, तो हमें पृथ्वी के पशु के अंतिम राष्ट्रपति के विषय में और जानकारी मिलती है, क्योंकि यीशु आरंभ के द्वारा अंत को दर्शाते हैं। 1776 और 1789 द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए पहले दो कालखंड दो गवाह प्रदान करते हैं कि अंतिम राष्ट्रपति 8वां राष्ट्रपति होगा, जो 7 में से था। रेगन के बाद ट्रंप छठे राष्ट्रपति थे, और 8वें राष्ट्रपति के रूप में वो 7 में से होगा। अंतिम और 8वां राष्ट्रपति तब शासन करेगा जब संयुक्त राज्य पशु के लिए और की प्रतिमा बनाएगा।
जब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पशु की प्रतिमा बनाई जाती है, उस समय शासन करने वाला राष्ट्रपति 8वां होना चाहिए, जो 7 में से है, जैसा कि पेटन रैंडोल्फ और जॉन हैनकॉक द्वारा इसकी गवाही दी गई है। पोप तंत्र वो 8वां सिर है जो 7 में से था, और उसे भविष्य सूचक घातक घाव लगा। पोप तंत्र की प्रतिमा होने के लिए वो 8वां राष्ट्रपति जो 7 में से है, उसमें भी घायल या मारा गया होने की भविष्य सूचक पहचान होनी चाहिए। पापायत को उसका घातक घाव एक ड्रैगन शक्ति फ्रांस से मिला, वही ड्रैगन शक्ति जिसके विरुद्ध पापायत तब से संघर्ष करती आ रही थी, जब पौलुस ने ये बताया कि अधर्म का भेद, अधर्म का मनुष्य उसी समय से कार्य कर रहा था। पैगनवाद का ड्रैगन पापायत को सिंहासन ग्रहण करने से रोके हुए था, जो अंततः 538 ईस्वी में हुआ।
पोपतंत्र की शुरुआत से लेकर उसके अंतिम पतन तक वो अजगर शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करता रहा है कि वो प्रतिमा किसी अजगर शक्ति से संघर्ष करे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में पोपतंत्र जो 8वां सिर है और 7 सिरों में से ही है, अंततः आग से जला दिया जाता है और उसके मांस को 10 राजा खा जाते हैं। दोनों मृत्यु घटनाओं में 1798 और अंतिम दिनों में पोपतंत्र का पशु एक अजगर शक्ति द्वारा मारा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को पशु की प्रतिमा बनाने के लिए ये भी आवश्यक होगा कि उसका 8वां राष्ट्रपति उस अजगर शक्ति द्वारा मारा जाए जिससे वो युद्धरत था, और 1979 में अंत के समय के बाद का 6ठा राजा वही राजा है जिसने सभी अजगर शक्तियों को उकसाया।
रोनाल्ड रीगन एक धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन जॉर्ज बुश प्रथम एक क्लासिक वैश्वती थे। उनके प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक वो है जिसमें उन्होंने 18 अगस्त 1988 को ये कहते हुए झूठ बोला, और मैं वो व्यक्ति हूं जो कर नहीं बढ़ाएगा। मेरा प्रतिद्वंद्वी अब कहता है कि वो उन्हें आखिरी उपाय के रूप में या तीसरे उपाय के रूप में बढ़ाएगा, लेकिन जब कोई राजनेता इस तरह बात करता है तो आप जानते हैं कि वो किसी न किसी रिसॉर्ट में चेक इन ही करेगा। मेरा प्रतिद्वंद्वी कर बढ़ाने की संभावना को खारिज नहीं करेगा, लेकिन मैं कर बढ़ाने को खारिज कर दूंगा और कांग्रेस मुझ पर कर बढ़ाने के लिए दबाव डालेगी और मैं कहूंगा नहीं, और वे दबाव डालेंगे और मैं कहूंगा नहीं, और वे फिर दबाव डालेंगे और मैं उनसे बस इतना ही कह सकता हूं, मेरे होंठ पड़िए नए कर नहीं। उस सार्वजनिक झूठ के अलावा जो ड्रैगन शक्ति के एक प्रतिनिधि की विशेषता है, उनका सबसे प्रसिद्ध उद्धरण 11 सितंबर 1990 को कांग्रेस के संयुक्त सत्र में था, जहां उन्होंने कहा, अब हम एक नया विश्व उभरता हुआ देख सकते हैं, ऐसा विश्व जिसमें नई विश्व व्यवस्था की बहुत वास्तविक संभावना है। विंस्टन चर्चिल के शब्दों में, एक विश्व व्यवस्था जिसमें न्याय और निष्पक्ष खेल के सिद्धांत शक्तिशाली के विरुद्ध कमजोरों की रक्षा करें, ऐसा विश्व जहां संयुक्त राष्ट्र शीत युद्ध के गतिरोध से मुक्त होकर अपने संस्थापकों की ऐतिहासिक दृष्टि को पूरा करने के लिए तत्पर है। बुश वरिष्ठ एक वैश्यवादी थे, भले ही वे स्वयं को रिपब्लिकन बताते थे।
बिल क्लिंटन लिंकन मेमोरियल में अपना शपथ ग्रहण समारोह कराने वाले पहले राष्ट्रपति थे, जिसका अर्थ है कि उन्होंने लिंकन की ओर पीठ करके वाशिंगटन के स्मारक के ओबेलिस्क की तरफ मुख किया, एक ऐसा ओबेलिस्क जिसके अंडर फ्रीमेसनरी के प्रतीक ब्रह्मी हुए, जब वो संविधान के प्रति अब निहनाई की जूरी शब्द है शब्द इच्छता, तब जिस ओबेलिस्क और फ्रीमेसनरी के प्रतीकों की ओर मुख केरफरने को वह न की वालमु उन्नीस दास्ता विरोध के प्रयोग नहीं लिंकन मेमोरियल की ओर पीठ फेर ली थी, बल्कि क्लिंटन द्वारा चुनी गई ये ऐतिहासिक स्थिति उसके स्वीकृति भाषण से भी मेल खाती है, जिसमें उसने उस जेसुइट विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की प्रशंसा की थी जिसके अधीन वो वहां पढ़ा था। उस प्रोफेसर कैरो क्विगली ने ट्रेजेडी एंड होप A History of the World in Our Time नामक पुस्तक लिखी, जो 1966 में प्रकाशित हुई थी और जिसे सही तथा व्यापक रूप से वैश्यवादी विचारों की बाइबल माना जाता है। जिस प्रकार इस्लाम के लिए कुरान है और जैसे अल्बर्ट फाइक द्वारा लिखी तथा 1851 में प्रकाशित Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry को Freemasonry की गूढ़ शिक्षाओं की सबसे व्यापक व्याख्या माना जाता है, या जैसे लेटर डे सेंट्स के लिए द बुक ऑफ मॉर्मन है, उसी प्रकार क्विगली की पुस्तक वैश्यवादी दर्शन की बाइबल है। यदि क्लिंटन ने कुरान के मोहम्मद की या द बुक ऑफ मॉर्मन के जोसेफ स्मिथ की प्रशंसा की होती, तो अधिकांश लोग ये जानते और कुछ लोग ये भी जानते कि अल्बर्ट फाइक कौन थे, परंतु बहुत कम लोगों को मालूम था कि क्विगली की प्रशंसा करना क्लिंटन के अपने वैश्यवादी एजेंडा के अनुरूप था और अब्राहम लिंकन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सिद्धांतों के उसके अस्वीकार के साथ सुसंगत था। अपने भाषण में क्लिंटन ने कहा, किशोरावस्था में मैंने जॉन केनेडी का नागरिकता का आह्वान सुना और फिर जॉर्जटाउन में छात्र रहते हुए कैरोल क्विगली नामक एक प्रोफेसर ने उस आह्वान को और स्पष्ट किया, जिन्होंने हमसे कहा कि अमेरिका इतिहास का सबसे महान राष्ट्र था, क्योंकि हमारे लोग हमेशा दो बातों पर विश्वास करते आए हैं, कि कल आज से बेहतर हो सकता है और ये कि हम में से हर एक पर इसे सच करने की व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी है। अमेरिका को फिर से महान कैसे बनाया जाए, पर कैरोल क्विगली का विचार ये था कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता संयुक्त राष्ट्र को सौंप दे। क्लिंटन एक डेमोक्रेट वैश्विकतावादी ड्रैगन का प्रतिनिधि थे, जैसा बाप वैसा बेटा जॉर्ज बुश आखिरी वाले एक वैश्वेशीकरणवादी थे, और उनके पिता भी, जो खुद को रिपब्लिकन होने का दावा करते थे, वैश्वीकरणवादी थे। पेड़ से सेब दूर नहीं गिरता, बाइबल ये आलंकारिक प्रश्न उठाती है, क्या दो जन साथ साथ चल सकते हैं जब तक कि वे सहमत न हों? ये देखने के लिए कि बुश आखिरी वाले किससे सहमत थे, बस उन अनेकी उद्यमों का पता लगा लीजिए जो बुश आखिरी वाले ने बिल और हिलेरी क्लिंटन के साथ मिलकर पूरे किए। राष्ट्रपति चुने जाने से ठीक पहले एक चुनावी रैली के दौरान बराक हुसैन ओबामा ने संयुक्त राज्य को मूलभूत रूप से बदलने के बारे में एक बयान दिया। 30 अक्टूबर 2008 को कोलंबिया मिसौरी में ओबामा ने कहा, हम संयुक्त राज्य अमेरिका को मूलभूत रूप से रूपांतरित करने से केवल 5 दिन दूर हैं। ये बयान ओबामा के व्यापक
आशा और परिवर्तन संदेश का हिस्सा था, जो उनकी 2008 की राष्ट्रपति पद की अभियान का केंद्रीय विषय था और जिसने देश के लिए अलग दिशा तथा महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने देश को जिस दिशा में मोड़ा वो थी वैश्वीकरण की ड्रैगन नीतियां, श्वेत विरोध, गर्भपात समर्थन, कार्बन ईंधनों का विरोध, अमेरिका विरोध और वैश्वीकरण समर्थन, विविधता, समानता, समावेशन, क्रिटिकल रेस्ट थ्योरी का झूठा इतिहास आदि आदि। ओबामा केवल एक सामुदायिक आयोजक भर नहीं थे, वे ड्रैगन शक्ति के वैश्वीकरणवादी एजेंडा के प्रतिनिधि थे और आज भी हैं।
ट्रंप हालांकि एक सामान्य आधुनिक राजनेता के विपरीत, 1989 से शुरू हुई अवधि में रहे अन्य सातों राष्ट्रपतियों ने मिलकर जितने वादे निभाए उससे अधिक वादे निभाए। वो अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे और ऐसा करने के प्रयास में उन्होंने न केवल संयुक्त राज्य में बल्कि पूरे विश्व में मौजूदा वैश्वादी ताकतों में खलबली मचा दी।
जो बाइडेन के पास इस बात का बिल्कुल भी कोई सबूत नहीं है कि वे एक और वैश्वीकरणवादी के अलावा कुछ और है।
कैथोलिकवाद का पशु ड्रैगन शक्तियों के साथ लंबे समय तक चलने वाला युद्ध लड़ता रहा और जब संयुक्त राज्य अमेरिका पोपतंत्र की एक छवि बनाता है, उस समय जो राष्ट्रपति शासन कर रहा होगा वो भविष्यवाणी की अनिवार्यता से ड्रैगन शक्तियों के साथ संघर्ष में होगा। जीवित राष्ट्रपतियों में डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर कोई भी ड्रैगन शक्तियों के साथ युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स खुले तौर पर वैश्विकतावादी ड्रैगन है और अंतिम जॉर्ज बुश भी अपने पिता की तरह था एक घोषित रिपब्लिकन, जो वास्तव में एक वैश्विकतावादी ड्रैगन है, क्योंकि यीशु सदा अंतिम को प्रथम से दर्शाते हैं।
हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
परमेश्वर की प्रजा की प्रतीक्षा एक बड़ा संकट कर रहा है, विश्व के लिए भी एक संकट आसन्न है। युगों युगों का सबसे निर्णायक संघर्ष हमारे सामने ही है। जिन घटाओं को हम 40 से अधिक वर्षों से भविष्यद्वाणी के वचन के अधिकार पर आसन्न घोषित करते आए हैं, वे अब हमारी आंखों के सामने घटित हो रही हैं। विवेक की स्वतंत्रता को सीमित करने हेतु संविधान में संशोधन का प्रश्न पहले से ही देश के विधायकों के सामने जोर देकर रखा जा रहा है। रविवार पालन को बाध्यकारी बनाने का प्रश्न राष्ट्रीय रुचि और महत्व का विषय बन गया है। हम भलीभांति जानते हैं कि इस आंदोलन का परिणाम क्या होगा, परंतु क्या हम इस स्थिति के लिए तैयार हैं? क्या हमने लोगों को उनके सामने उपस्थित खतरे की चेतावनी देने का वो दायित्व जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है निष्ठापूर्वक निभाया है?
रविवार के प्रवर्तन के इस आंदोलन में लगे हुए लोगों में भी बहुत से ऐसे हैं जो इस कदम के परिणामों के प्रति अंधे हैं। वे ये नहीं देखते कि वे धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधे प्रहार कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने कभी बाइबिल के सप्त के दावों और उस झूठी नींव को नहीं समझा जिस पर रविवार की संस्था टिकी है। धार्मिक विधान के पक्ष में कोई भी आंदोलन वस्तुतः वापसी को रियायत देने का कार्य है, जिसने इतने युगों तक अंतःकरण की स्वतंत्रता के विरुद्ध लगातार युद्ध किया है। रविवार का पालन एक तथाकथित मसीही संस्था के रूप में अपने अस्तित्व का ऋणी अधर्म के भेद को है और उसका प्रवर्तन रोमनवाद के उन सिद्धांतों की व्यावहारिक स्वीकृति होगा जो उसके मूलाधार हैं। जब हमारा राष्ट्र अपने शासन के सिद्धांतों का इतना परित्याग करेगा कि रविवार का कानून बना देगा, तब प्रोटेस्टेंटवाद इस कार्य में पोपवाद से हाथ मिला देगा। ये और कुछ नहीं होगा सिवाय उस अत्याचार को जीवन देने के जो लंबे समय से फिर से सक्रिय निरंकुशता में छलांग लगाने के अवसर की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है।
राष्ट्रीय सुधार आंदोलन धार्मिक कानून बनाने की शक्ति का उपयोग करते हुए जब पूरी तरह विकसित हो जाएगा तो वही असहिष्णुता और उत्पीड़न प्रकट करेगा जो पिछले युगों में प्रचलित रहे हैं। तब मानव परिषदों ने ईश्वर के विशेषाधिकार अपने ऊपर ले लिए, अपनी निरंकुश शक्ति के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता को कुचल दिया और उनके आदेशों का विरोध करने वालों के लिए कारावास, निर्वासन और मृत्यु का सिलसिला चला। यदि पापायत या उसके सिद्धांतों को फिर से कानून के द्वारा सत्ता में लाया गया तो उत्पीड़न की आग फिर से भड़क उठेगी उन लोगों के विरुद्ध जो जन प्रचलित भ्रांतियों के आगे झुककर अपने अंतःकरण और सत्य का बलिदान नहीं करेंगे। ये अनिष्ट अब मूर्त रूप लेने ही वाला है। जब परमेश्वर ने हमें वो ज्योति दी है जो हमारे सामने के खतरों को दिखाती है, तो यदि हम इसे लोगों के सामने रखने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर संभव प्रयास करने की उपेक्षा करें, तो हम उसकी दृष्टि में कैसे निर्दोष ठहर सकते हैं? क्या हम उन्हें बिना चेतावनी के इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे का सामना करने के लिए छोड़ देने में संतुष्ट हो सकते हैं? टेस्टिमोनीज खंड 5 711-712।